आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारंड के समय सार कलश 31 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराए सौरभ्या चकाशे चित्त भावाय भावाय सर्व भावांतर।
34वीं गाथा से चर्चा आरंभ की थी, 33वीं गाथा तक चर्चा हुई है, उसके अंत का ये कलश है और उसके बाद में 38वीं गाथा के बाद ये अधिकार ही समाप्त होगा, जीवाधिकार जिसे हम कहते हैं। वो कलश इस प्रकार है, देखो, इति सति सह सर्वई अन्न भावई विवेके स्वयमुपयोगो विभत मात्मनमेकम् प्रकटत परमार्थई दर्शन ज्ञान वृत्तई कृत परिणतिरात्मा राम एवः प्रवृत्तः। क्या कहते हैं, देखो, इति सति सह सर्वई अन्य भावई विवेकई, इति माने इस प्रकार, इस प्रकार माने जो हमने 19वीं गाथा से शुरू किया था और 37वीं गाथा तक, सर्व पर पदार्थों से भगवान आत्मा भिन्न है ये हमने बताया, अथवा गेय भावों से और भावक भावों से भगवान आत्मा भिन्न है ऐसा हमने पिछली दो गाथाओं में बताया। तो इति इति में इतनी बात आई, इति सती सह सर्वई अन्न भावई विवेकई, अन्य भाव जितने पर पदार्थों के भाव हैं उनके साथ ऐसा विवेक उत्पन्न हो जाने पर, कैसा विवेक, ए मैं नहीं हूँ, मैं इनसे भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, स्वयं उपयोगो आत्मानम एकम विभ्रत, क्या हम उपयोग करेगा, क्या कह रहे हैं, एकम आत्मानम विभ्रत, क्योंकि उस उपयोग को कोई दूसरा सहारा ही नहीं बचा कि अब वो जाए कहाँ, इसलिए एक आत्मा में ही जाएगा। क्या कह रहे, सुनो, भक्तांबर स्तोत्र है ना, भगवान आदिनाथ का स्तोत्र, उसमें एक कलश आता है, एक छंद आता है भगवान की स्तुति में कि हे भगवान, ये बात समझ में नहीं आती है कि सारे गुण दुनिया के आप में ही इकट्ठे हो गए, अरे ये कोई अच्छी बात है क्या, आज का जमाना तो समाजवाद का जमाना है, थोड़ी थोड़ी सब जगह बांट देना चाहिए, एक जगह संपत्ति इकट्ठे हो जाना तो अच्छी बात नहीं है ना जगदीश भाई, हैं? तो ये सारे गुण आप में ही इकट्ठे हो गए और एक भी दुर्गुण आप में नहीं है और सारी दुनिया में दुर्गुण ही दुर्गुण है, ये अन्याय आज ठीक नहीं है, थोड़े थोड़े गुण सबको बांट देते, थोड़े थोड़े दुर्गुण भी सबके साथ रहना चाहिए था, अब एक आदमी को अच्छी अच्छी सब चीजें मिल गई और दूसरे को बुरी बुरी चीजें मिली, ये बात तो ठीक नहीं है ना। तो भगवान से मंतुंगाचारी कहते हैं कि ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ, फिर स्वयं ही इस प्रश्न का जवाब देते हैं, क्या जवाब दिया है, दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर भई स्वप्नांतरे पिन कदाचित पीछतोषी, नीचे की दो पंक्तियां, ऊपर की दो पंक्तियां बोलो भाई, को विस्मयो त्रयदि नाम गुणैर शेषई, हे भगवान, यदि अशेषई गुणई, अशेष माने संपूर्ण गुण, वो निर्विकास तया मुनीसा, हे मुनियों के ईश, तुम में निर्विकास तया, बिल्कुल बीच में जगह नहीं है, ऐसे भर गए हैं, अवकाश की गुंजाइश नहीं, उसे क्या बोलते हैं, निर्विकास तया मुनीसा, इस पंडाल में बैठने की जगह नहीं है, मुकुंद आगे सरका आगे सरका, लेकिन सरके कहां, जगह हो तब आगे ना। तो ये गुण भगवान में इस कदर भरे हैं कि अंदर में जगह नहीं है, थर्ड क्लास के डब्बे के समान बिना रिजर्वेशन के, हे मुनीस, हे मुनियों के ईश, इस सारे गुण आप में खचा खच भर गए हैं, निर्विकास तया, जिनमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसमें क्या आश्चर्य है, क्यों, और एक भी दोष नहीं है इसमें भी क्या आश्चर्य है, दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर भई, कि दोषों को एक घमंड हो गया कि हमारा स्वागत करने तो गली गली में लोग पांव पलक बिछाए करके खड़े हैं, हम तुम्हारे पास क्यों आए, क्या कहते, सुनो, दोष क्यों नहीं आए प्रवीण भाई, कि जहां दोष गए हर गली में हर दरवाजे पर उसका स्वागत हुआ, आ जाओ भाई साहब, और भगवान के पास आए तो वहाँ कोई स्वागत करने वाला, आवकार देने वाला था ही नहीं। तो तुलसीदास जी का वो सिद्धांत उसने अपना लिया कि तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्ष में, आवत ही हर्ष नहीं और नैनन नहीं सने। इसलिए भगवान एक भी गुण और अवगुण तुम्हारे पास नहीं आया, क्योंकि वहां हजार आदमी स्वागत करने के लिए तैयार खड़े और यहां तुम अपमान करो, दरवाजा नहीं खोलो। क्यों हनुमुख भाई, यहां देवलाली में जबरदस्ती के प्रवचन करो, सुबह भी करना पड़ेगा, जाते जाते भी करना पड़ेगा। क्यों तो वहां छोड़ के और कह के देखो साहब आप आए, आ तो सकते हो लेकिन प्रवचन नहीं कर सकते हो, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, कैसे जाएगा वहां। मेरी बात में हमान तुंगाचार्य कह रहे कि वो दोषों का हर गली में स्वागत हुआ, इसलिए वे वहीं अटक गए, वो तुम्हारे दरवाजे तक आए भी नहीं। इसलिए भगवान में एक भी दोष नहीं है। और गुण सब क्यों आ गए, इसलिए आ गए कि जहां भी गुण गए तो किसी ने स्वागत ही नहीं किया, बल्कि नो एडमिशन विदाउट परमिशन, हमारे यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या हमें सन्यासी बनाना है तो हमारे घर में आ जाओगे, सत्य अहिंसा अचौरी तो दिवाला निकालना है हमारा, हमारे यहां तो सब चलेगा। कहीं विचारों को जगह नहीं मिली, गुणों को। नरेंद्र भाई एक दरवाजा खुला मिल गया तुम्हारा तो बिना पूछे सबके सब भर गए, क्योंकि दूसरी जगह तो कोई जगह ही नहीं थी। मान तुंगाचार्य ने 2000 वर्ष पहले भगवान आदिनाथ की स्तुति में लिखा है, को विस्मयोत्र यदि नाम गुण अशेषई। यार समझ में आता ना, इसमें को विस्मयो कौन सा आश्चर्य है, काय में अशेषई गुणई निर्विकास तया मुनीसा तुम संसतो। बिना अवकाश के तुम में भर गए हैं, तुम्हारा आश्रय ले रहे हैं, इसमें कौन से आश्चर्य है। फिर दोष क्यों नहीं आए, दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्भई। उन्हें तो गली गली में सहारा मिला, इसलिए घमंड हो गया। स्वप्नांतरे पिन कदाचित पीक छतोसी, इसलिए उन्होंने तुम्हें सपने में भी नहीं देखा। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि इस भगवान आत्मा को ए परद्रव ए परद्रव ए परद्रव ए परद्रव परद्रव माने सबके दरवाजे बंद हो गए ना। अब रमने जमने को कोई जगह बची नहीं, न गे भाव न भावक भाव, तो उपयोग अब जाएगा कहाँ। इसमें लिखा है इसलिए उपयोग अन्य आश्रय के अभाव में आत्मा कोई विभ्रत माने धारण करता है। अब तो बहुत सरल है इसका अर्थ, कोई कठिन नहीं है। देखो हिंदी जैसी संस्कृत है, पढ़ता हूं तो आपको ख्याल में आएगी। इति सति सह सर्वई अन्य भावई विवेक ये स्वयं अयम उपयोगो विभ्रत आत्मानम एकम एकम आत्मानम विभ्रत। एक आत्मा में उपयोग लग गया ज्ञानी का, क्यों कि पर में लगे का। अभी तो बता रहे थे तुम कल ही शाम को कि लोकालोक इसका गे है और सबको पर को जानने का अधिकार है और सुपर प्रकाशक स्वभाव है, तो पर को जानता रहे ना। क्यों मधु भाई अब जानता रहे कि साहब जानने के लिए काम बनाई है, लेकिन ये भी तो जाना कि ये मैं नहीं हूं, वो जानने में ये शामिल है कि नहीं है, बोलो। फिर कहता हूं ध्यान से सुनना, जब हमने ये जाना कि धर्म द्रव्य है तो साथ में ये जाना कि नहीं जाना कि धर्म द्रव्य मैं नहीं हूं। यदि नहीं जाना तो उसका नाम है कि तुमने धर्म द्रव्य को जाना ही नहीं। ऐसा है उसमें गुरुदेव के पतन में भी है, मूल में भी है। क्या क्योंकि हर जानने में स्वपर भेद विज्ञान करना है ना। कोई भी चीज तुम्हारे ज्ञान का गे बने तो तत्काल साथ में ये ज्ञान भी होना चाहिए कि ये अपना है कि नहीं है। ये ज्ञान का स्वभाव है जगदीश भाई, अभी सिद्ध करता हूं, घबराना नहीं। ये पंडित जी है ना, ये बहुत अच्छा बोलता है। अच्छा 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 बोलता है, तुमने सुना क्या, आप सुनोगे तो मुग्ध हो जाओगे। है कौन, कहां ना पंडित है, ये पंडित तो छे पर है कौन के पंडित है। समझ गया ना, पंडित तो छे पर गुजराती छे ना, गुजराती तो नहीं है
माता,
यानी उसको जानने के साथ में जो अपना है कि नहीं है, ऐसे जानने का तीव्र भाव होता है कि नहीं? और जब तक ये जानने में नहीं आए तब तक संतोष होता है क्या? बोलो क्यों? पंडित तो छे, गुजराती पण छे, पण ये अपना छे के नहीं, ये अपना क्या है? ये मुमुक्षु छे के नहीं? क्यों? क्या पंडित छे, गुजराती छे, मुमुक्षु पर छे, पण अपना छे के नहीं? अभी अपना तेरा क्या बाकी रह गया? नहीं नहीं, अरे ये तो रहस्य मालूम नहीं है। सबकी समझ में आ गया, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सोनगढ़िया छे के जयपुरिया छे। जब तक अंतिम भेद विज्ञान तक नहीं पहुंचे तब तक सच बोलना संतोष होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं हम उसको ज्ञान ही नहीं कहते हैं तो जब तक वो भेद विज्ञान नहीं हो। ख्याल में है ना? अच्छा, और जब ये पता लगता है कि ये अपना है तब ही राग उमड़ता है ना। तो इसलिए धर्म द्रव्य को जाना, अधर्म द्रव्य को जाना, काल आकाश काल को सबको जाना गे भाव से, लेकिन सबके साथ में ये भी जाना कि ये मैं नहीं हूं। इसलिए उपयोग को ठहरने की कोई जगह नहीं मिली। समझ में आया ना? ठहरने की माने एक समय से अधिक काल जानता रहना, उसका नाम ठहरना। उसका नाम क्या था बताया था? ध्यान। उसका नाम त्याग, उसका नाम प्रत्याख्यान, उसका नाम प्रतिक्रमण। कितने नाम बताए थे कल परसों? स्थिर हुआ ज्ञान प्रत्याख्यान है। तो कहते उस उपयोग को कहीं पर मैं ठहरने की जगह नहीं मिली। जाना तो सबको, लेकिन जमने लायक कोई जगह नहीं थी, क्योंकि साथ में ये जाना कि ये मैं नहीं। वो अपना वो छोकरा है ना, कौन सा, वो मेले में खो गया था, वो तो सुना होगा ना सबने, नहीं तो उसमें पढ़ लेना, वो आत्मा ही है शरण में। मेले में खोया हुआ छोकरा, तो उसने हजारों महिलाओं को देखा कि नहीं देखा, लेकिन किसी से लिपटा नहीं, झिपटा नहीं, उसे आनंद की किरण अंदर में नहीं फूटी। क्यों? सबको जाना ना, और माताओं बहनों को ही जाना, और सुंदर सुंदर माता बहनों को जाना, और बढ़िया साड़ियां पहने थी, और गहने भी बढ़िया पहने थी, लेकिन हरेक जानने के साथ में ये भी लगा था कि ये मेरी मम्मी नहीं, इसलिए आनंद का उदय नहीं हुआ। उपयोग को ठहरने की जगह। क्यों होता है कि नहीं होता है? बेटा पहली दफे बंबई जा रहा था, राजकोट से समझ लो, तो जयपुर से एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? तो माँ बाप वहां स्टेशन पे भेजने गए। अब आजकल जैसा रिजर्वेशन का जमाना नहीं था, पुरानी बात है, बिना रिजर्वेशन के सब डब्बे में बैठते थे, खूब भीड़ होती थी। क्यों मोटा नहीं आए होगे ना, कुर्ता मुर्ता भी फट गया होगा, खड़े खड़े आए ना। उस डब्बे में बैठा के घर पे गए लौट के, तो बाप उदास उदास बैठा था। तो उसकी पत्नी पूछी, क्या बात है, क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? कि बेटा अकेला बंबई गया, पहली दफे गया और अकेला गया, डब्बे में खड़े होने की जगह नहीं थी, मैंने खिड़की में से कैसे अंदर डाला है नहीं जानता हूँ। क्या बोलता है? क्या हो गया तुम, पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों यहाँ कह रहे हो अकेला गए, और यहाँ कह रहे डब्बे में जगह नहीं थी? तो इतनी भीड़ थी तो सारी भीड़ बंबई गई ना, अकेला कहाँ गया? बोलो ठीक है ना गुरुजी? अरे भीड़ तो बहुत थी, लेकिन अपना कोई नहीं था। समझ में आया ना? और डीप डब्बा बिल्कुल खाली होता, और एक आदमी अपना होता साथ में, उसकी पत्नी भाई कोई भी, तो हम अकेला गया नहीं मानते। तो भीड़ को होने से क्या होता है? जब तक उसमें अपनापन नहीं हो, अकेलापन मिटता नहीं। क्यों? हमारा बच्चा बंबई में अकेला रहता है, कौन कहता है बंबई में तो 1 करोड़ लोग रहते हैं, सड़कों पे जगह नहीं है खड़े होने की। क्यों? लेकिन ऐसी भीड़ का क्या लेना देना है? ऐसे ही गे तो इस लोक में अनंत हैं, और सब ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन उनमें अपना कहने के लिए कोई नहीं है। इसलिए उपयोग को ठहरने की जगह। बंबई में मकानों की कमी है? मकान तो सारे हिंदुस्तान में जितने नहीं उतने बंबई में है। क्यों रजनी भाई, है ना? फिर लोग फुटपाथ पर क्यों सोते हैं, किसी मकान में क्यों नहीं सोते? कि मकानों की कमी की बात थोड़ी है, उनका अपना कोई मकान नहीं है। तो ये लाखों मकान किस काम के? ठहरने की जगह नहीं है ना, तो जगह तो बहुत है लेकिन सवाल अपनी जगह होने का है। तो उपयोग को जानने के लिए तो जगत पड़ा है लेकिन ठहरा तो अपनी जगह जाता है। जब सारे पर पदार्थों में अपनापन टूट गया तो ठहरने के लिए अपना अकेला आत्मा बचा, इसलिए उपयोग आत्मा में ठहर गया। क्यों ठहर गया, इसमें क्या बात है? नहीं आई समझ में? इतनी कितनी सीधी सरल बात है। और अभी तक क्यों नहीं ठहरा था ईश्वर भाई? इसलिए नहीं ठहरा था कि अभी बहुत ठिकाने थे, जे भी अपना, धर्म भी अपना, धर्म भी अपना, राग भी अपना, बस जितने अपने थे तो वहीं ठहर जाता था। आज तक अपने में क्यों नहीं आया था? अभी तो बहुत ठिकाने थे, ख्याल में है ना? अभी तक तो बहुत ठिकाने थे इसलिए वहां ठहर जाता था, और अब उसकी दृष्टि में कोई अपना नहीं रहा, ख्याल में आया ना? इसलिए कहां आया, अपने में आ गया। जब कोई ठिकाना नहीं था तो अपने में ठहर गया। आत्मा का धर्म कितना सरल है देखो, इसमें क्या है? वो चंद्रमा है ना आकाश में, पूर्णमासी का चंद्रमा देखा ना, तो उसमें कुछ दाग सा होता है। ये दाग क्यों होगा, क्या है? नानी से पूछा तो नानी ने बताया कि हिरण बैठा है उसमें। दादी से पूछा तो दादी ने बताया है बुढ़िया सूत कात रही है। नहीं सुना था? नानी ने इसे पूछा तो नानी ने क्या बताया? हिरण बैठा है। दादी से पूछा तो दादी ने बताया है कि बुढ़िया सूत कात रही है। कवियों से पूछा तो बोला कि दागीला है ना, दागीला है? लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें आश्चर्य की बात क्या है। थोड़े से बाल उग गया है, आखिर चांद है ना? नहीं आया समझ में? सर ध्यान से सुनो भाई, इसमें गजब क्या हो गया है? थोड़े से बाल उग गया है, आखिर चांद है ना? चांद पे बाल नहीं उगेंगे तो क्या होगा भाई साहब? ऐसा समझ ले करीब कि चांद में काला काला क्या है? नानी से पूछा तो हिरण बैठा है, दादी से पूछा तो बुढ़िया सूत कात रही है, इन कवियों से पूछा तो कहते हैं दागीला है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता इसमें क्या गजब हो गया है। थोड़े से बाल उग गया है, आखिर चांद ही तो है ना, गजब क्या है? ऐसे ही ये भगवान आत्मा, आत्मा में जम गया, रम गया, इसमें गजब क्या हो गया? क्यों? अभी तक तो इसको बहुत इसके थे, क्या अभी तक तो सारे गेय पदार्थों में अपनापन स्थापित कर रखा था, इसलिए उनमें ही जम जाता था। अब क्या हुआ कि इति सति सह सर्वई अन्य भावई विवेके, क्या इति सति सह सर्वई अन्य भावई विवेके, ऐसा निर्णय होने पर कि कोई भी पर पदार्थ मेरा नहीं है, क्या ऐसा निर्णय होने पर कि कोई भी पर पदार्थ मेरा नहीं है, इति विवेके, ऐसा विवेक उत्पन्न होने पर क्या हुआ कि अयम उपयोगा, यह जो ज्ञान उपयोग है, ये स्वयं ही एकम आत्मानम बिभ्रत, एक आत्मा में जम गया। इसमें गजब क्या हो, सम्मत असन होने में कौन सी कठिनाई है? तो उपयोग आत्मा का आत्मा में नहीं लगता, उपयोग आत्मा का आत्मा में नहीं लगता, खैर है ना? अरे उपयोग आत्मा का आत्मा में क्यों नहीं लगता देवीलाल जी? क्योंकि अभी इसके बहुत अपने हैं, इसके अभी बहुत अपने हैं तो उनमें लगता है। जब ये निर्णय हुआ कि कोई अपना नहीं है, ख्याल में है ना, जब ये पता लगा कि कोई अपना नहीं है तो उपयोग चुपचाप आकर अपने आत्मा में जम गया। ये दो पंक्तियों का अर्थ है, जो कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं, पढ़ता हूँ, सब संस्कृत है। इति सति सह सर्वई अन्य भावई विवेके स्वयं अयम उपयोगो विभ्रत आत्मानम एकम। आपको संधि तोड़ के पढ़ता हूँ जिससे आपके ख्याल में आ जाए, बिल्कुल सीधा है। क्यों मोटानी जी आता ना, क्या कह रहे हैं आचार्य? गजब क्या है, आत्मा का अनुभव कैसे हो, आत्मा का अनुभव कैसे हो, आत्मा का अनुभव, उसमें कौन सी कला है? तेरे उपयोग में जब तक पर अपना दिखता रहेगा तब तक आत्मा में उपयोग अपना नहीं आएगा। एक दफे ये पक्का नक्की हो जाए कि कोई पर पदार्थ अपना नहीं है, क्या चांद में तो बाल उग गया और क्या हुआ? ये कह रहा है, आपकी जो कम सुनती ना इसलिए ख्याल में नहीं, उसे छोड़ो, तो उदाहरण था। उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गया ना, उससे कोई ये तो आचार्य क्या कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं, सब महत्व की छोड़ दो आप। यहाँ ये कह रहे हैं कि उपयोग आत्मा में क्यों नहीं जाता है और ज्ञानियों का उपयोग आत्मा में क्यों चला गया, क्या ख्याल में है? इतनी बात है। अभी देखो, बेटे को मम्मी ने एक चांटा मार दिया और भाग गया, रोने लग गया जोर से, क्या है? अभी उसकी दादी ने मना लिया, नानी ने मना लिया, वो मम्मी के पास जाने वाला है कुछ है? और अभी दादी के पास गई कि दादी मम्मी ने मारा, मम्मी ने मारा। बेटा तूने कोई गलती की होगी, मम्मी वैसे तो मारती नहीं है। नहीं नहीं, नानी नानी मम्मी ने मारा, मम्मी ने मारा, तूने क्या गलती की, तू बता। अभी कहीं कोई सहारा नहीं मिले तो चुपचाप मम्मी के पास पहुंच जाने वाला, सच्ची बात है कि नहीं? तो जाना देखते नहीं देखते हैं। और कहीं कोई उसको सह देने वाला मुझे, चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी मम्मी को पीटूंगा डांटूंगा, तो फिक्र मत कर, तू समझती क्या है मम्मी, बस फिर तो बस मैंने छोड़ा और बाजार से करा। इस उपयोग को कहीं आसरा मिलना चाहिए, सहारा मिलना चाहिए, कहीं अपनापन मिलना चाहिए, क्यों? लेकिन ज्ञानी ने तो जान लिया कि कोई अपना है ही नहीं, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है सारा संसारा, क्यों? एक एक ख्याल में आया तो अब तो उपयोग आत्मा में जाने ही वाला है और जमने ही वाला है, क्यों? कि अब वहां से जाए कहां, कोई अपना है ही नहीं, ख्याल में आया ना। तो उपयोग आत्मा में आए इसके लिए क्या जरूरी है? पर का नहीं जानना कि पर को निज नहीं जानना। बोलो आप, बोलो आप, क्या नाम मधु भाई, ख्याल में आई बात क्या? नहीं बैठे आओगे, ख्याल में आई बात, क्या कहना चाहता हूं मैं? निज नहीं जानना, निषेध निज जानने का है, उसमें अपनत्वपन का है, उसे निज मैं ये हूं ऐसा नहीं जानने का निषेध है, जानने का निषेध नहीं। नहीं जानोगे तो क्या मैं नहीं हूं, ये तो जानना ही पड़ेगा ना। तो आज हमने कह दिया कि मैं ये हूं ये हूं, तो कल उसे मान लेगा तो एक दफे सबको खड़ा करो। सही वकील क्या राय देता है कि कोई केस यदि तुम पर डाल आ गया है तो पुलिस को रुपया मुपया देकर उसे दबाओ मत, क्योंकि वो फाइल खड़ी रहेगी, वो फाइल दबा देगा, और कभी भी वो फाइल उठा करके खड़ी हो जाएगी, तुम सारे जिंदगी अपराधी बने रहोगे। यदि तुम निरपराधी हो तो क्या करना चाहिए कि एक दफे वो केस चले, गवाह सफाए हो जाए और फैसला हो जाए, और फैसला होकर के हाई कोर्ट में अपील करने का जो एक दो महीना की समय मिले ना, वो भी पास हो जाए, तो वो फाइल क्लोज हो गई, अब निश्चिंत हो जाओ। उसको दबाना और पेशी टालना ये उपाय नहीं है, क्यों? समझते ना, समझदार वकील तो यही सलाह देता है नहीं कि यदि एक दफे रिपोर्ट हो गई है और खतरनाक रिपोर्ट हो गई है तो उसको केस चला करके खत्म करके ही खत्म करना, फाइल क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग रखना वो कभी भी कोई शत्रु आएगा वो उस फाइल को उखाड़ेगा। देवीलाल जी साहब, तो ऐसे ही किसी पर की ये फाइल तो स्टैंडिंग रख दी, तुम हमें जानने नहीं, जानने नहीं, ये फाइल स्टैंडिंग होगी, नहीं नहीं मर जाओगे, अब तो जो आगे आना पर तो उसे जानो, और जान के नक्की करोगे अपना है कि नहीं है, और अदालत में पक्का करोगे ये अपना नहीं है, और फिर अब केस खत्म। क्यों कंजनमैन, बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे गोलम गोल में काम मत निपटाओ, अब बात उठ गई है तो उसे क्लियर करके निपटाओ कि अपना है कि नहीं है। तो ये 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 मैं नहीं हूं, ये नहीं है ऐसा थोड़ी जानना है, माने उसकी सत्ता को स्वीकार करो, और इसमें तो मेरे में इसकी नास्ती है। जैन दर्शन में अभाव रूप अभाव नहीं होता है, भाव रूप अभाव होता है। सुना कभी तुमने? सुना, मैं एक छंद बोलता हूं, आचार्य समंत भद्र का है, समंत भद्र माने न्याय के कुंद कुंद, भवत्यभावोपि वस्तु धर्मा, अभाव भी वस्तु का धर्म है। अभाव अभाव रूप नहीं होता, अभाव सद्भाव रूप होता है। क्यों? परद्रव्यादि का नय है कि नहीं, अस्तित्व नय और नास्तित्व नय है कि नहीं, समझे ना? अभाव भी जैन धर्म में भाव रूप होता है, गधे के सींग जैसा अभाव नहीं होता है। तो परद्रव्य का अभाव नहीं है, परद्रव्य का मेरे में अभाव है। तो परद्रव्य को जानो, उसकी सत्ता को स्वीकार करो, और अपने में उसकी सत्ता नहीं है, मेरी सत्ता न्यारी है, और उसकी सत्ता न्यारी है। ऐसा निर्णय करो तो उपयोग को कहीं ठिकाना नहीं रहा। पर में कहो ये अपना नहीं, 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 तो कौन अपना? एक ही रह गया अपने में। तो जैसे भी सारे गुण भगवान आदिनाथ में इकट्ठे हो गए ना, दरवाजा खुला मिला, तो आपका उपयोग भी यही आएगा। और अब कहाँ जाना, कोई अपना तो है ही नहीं, समझ में आया ना? तो वो यही ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा? मैं आया बम्बई में और मानिक भाई आपके यहाँ आया कि पंडित जी कहाँ ठहरोगे, कि हमारा और कौन है आपके अलावा? कि नहीं है। ऐसा नक्की हुआ तो उपयोग आत्मानम एकम विभ्रत, एक आत्मा को धारण कर लेगा और वहीं जम जाएगा। और जमा अंतर मूर्त जमा रहा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, काम खत्म। इतना सा तो इतनी सी बात है, बहुत दिक्कत है। एक था राम और एक था रामन्ना, एक था राम और एक था रामन, बाने बाकी नार हरी और बाने बाकी नाथ हरी। इतनी सी तो बात हुई ना कि उसने रावण ने राम की औरत को हर ले गया, तो राम को रावण ने राम ने रावण को मार डाला। अब इतनी सी तो बात थी, एक था राम और एक था रामन्ना, बाने बाकी नारहरी नारहरी बाने बाकी नाखरी। इतनी बात को बातन्ना और तुलसी रच गए पोथन्ना, हम पड़त पड़त मरे जा रहे। 700 पेज की रामायण, फिर क्या रामायण में? क्यों? एक था आत्मा और एक थे पर पदार्थ। क्या था? एक था आत्मा, एक थे पर पदार्थ। आत्मा ने पर पदार्थों को अपना माना था, चार गति 84 लाख योनियों में भटका था। आत्मा ने पर को अपना मानना छोड़ दिया, अपने में जम गया तो मोक्ष हो गया। इतनी बात को बातन्ना, कुंद कुंद रच गए पोतन्ना। बोले और क्या है इस कलश में लिखा है? मैंने तो अपने तरीके से उसे प्रस्तुत किया है, माल इसमें ही भरा है। दो पंक्तियों का अर्थ मैंने अभी आपके सामने किया है। देखो मेरा गला अच्छा ज्यादा काम नहीं करता है ना, मेरे गला थोड़ी है पूरा नाला है पर नाला तो मुझे ना इसलिए जरा मैं गा नहीं सकता हूँ, गाने का मन तो मेरा बहुत होता है। इति सती सह सर्वई अन्य भावई विवेके, है ना आपके पास किताब? स्वयं अयम उपयोगो बिभ्रदात्मान मेकम प्रकटित परमार्थई। अभी नीचे की दो पंक्तियां, दर्शन ज्ञान वृत्तई कृत परिणति रात्मा राम एव प्रवृत्ता। अभी अभी पढ़ूंगा, इसका अर्थ भी पढ़ूंगा, भावा भी पढ़ूंगा, घबराना नहीं। इसमें क्या लिखा है? प्रकटित परमार्थई, परमार्थ प्रकट हो गया। आत्मा अपने में क्या जमा? कि परमार्थ प्रकट हो गया, है ना? गुरुदेव आकर सोनगढ़ में जम गए तो सोनगढ़ तीरथ बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? क्या किया उनने वहां बैठ के? स्वाध्याय किया और क्या किया? यही तो फर्क होता है कि एक सतपुरुष महापुरुष जहां बैठ जाए वहां तीरथ बन जाते हैं। पहले कहें जहां जहां पैर पड़े संतन के तहां तहां तीरथ हो, ये आता है ना? और क्या बोलते हैं बोलिए? ख्याल में है ना? आत्मा का उपयोग, आत्मा में बैठ गया, स्थिर हो गया, तो क्या हुआ? प्रकटित परमार्थ ही, परमार्थ प्रकट हो गया। प्रकट हो गया माने क्या? परमार्थ, परमार्थ तो उसे बोलते हैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को। तो क्या प्रकट हो गया? तो कहते दर्शन ज्ञान वृत्तई, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गए, इसको बोलते हैं परमार्थ प्रकट हो गया। दर्शन ज्ञान वृत्तई है कि नहीं? कृत परिणति रात्मा राम एव प्रवृत्ता, ये आत्मा अपनी निर्मल परिणति में प्रवृत्त हो गया। तो अब यहाँ निर्मल परिणति को तो शामिल रखा, विकार को हटा दिया, लेकिन दृष्टि के विषय में शामिल थोड़ी रखा। वो दृष्टि के विषय में तो उपयोग स्थिर हुआ तो पर्याय में दर्शन ज्ञान चारित्र पैदा हो गए। देखो इसी कलश का पहले भावार्थ पढ़ लो, आप ख्याल में आएगा। सर्व परद्रव्यों से यही है ना, तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, तब उपयोग के रमण के लिए अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा। ख्याल में है ना? इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ, वह आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा जानना। अब एक रूप लिया, लेकिन यहाँ ऐसा एक रूप नहीं है, वो इस दर्शन ज्ञान तात् प्रकट परिणति में हो गए, ऐसा ऐसा एक रूप है। पर्याय से भी द्रव्य तन्मय होता है ना, दृष्टि का विषय नहीं होता हो, दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं हो, लेकिन जो पर्याय प्रकट होती है द्रव्य उस पर्याय से तन्मय ही होता है। नहीं नहीं, सम्मति में प्रकट हुआ तो आत्मा सम्मति में पर्याय से तन्मय है, तब तो सम्मति दृष्टि कहलाता है। सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो आत्मा सम्यक ज्ञान पर्याय से तन्मय, तब तो सम्यक ज्ञान ही कहलाएगा। केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो भगवान आत्मा केवल ज्ञान पर्याय से तन्मय, तब तो केवल ज्ञान ही कहलाता है। मैं एक मेक है वो, ऐसा तो केवल ज्ञान यहाँ रखा है और आत्मा यहाँ रखा है, आत्मा में ही केवल ज्ञान प्रकट होता है ना, माने वो अलग अलग नहीं होते हैं ना उनका। ये तन्मय हुआ, इसका मतलब है तन्मय हुआ। अब देखिए जरा अर्थ पढ़ते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से भावक भाव और गेय भावों से भेद ज्ञान होने पर जब सर्व अन्य भावों से भिन्नता हुई, तब यह उपयोग स्वयं ही माने अपने आप ही अपने एक आत्मा को ही धारण करता हुआ जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र से जिसने परिणति की है, ऐसा अपने आत्मा रूपी बाग में प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता है। देखो ना, आत्मा राम एव प्रवृत्ता, ये बात कहाँ आ गया? बात काय का अर्थ है? आराम, आराम माने बाग होता है, सुना कभी? आराम मिलता है ना, लोग आप जाके बाग में आराम करते हो, आराम आराम माने आत्मा राम। इसकी संधि विच्छेद करो तो आत्मा प्लस आराम निकलता है, जानते हो? ये संधि जानते हैं ना? देखो छोटा ह्रस्व आ होता है ना, क्या बोलते, ए बोलते आप क्या? ए प्लस ए इक्वल टू आ, ठीक है ना? ए प्लस आ इक्वल टू आ प्लस ए इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू आ, यही होता ना, दोनों दीर्घ आ हो तो भी। तो आत्मा और आराम इसको मिलाएंगे तो भी आत्मा राम होगा, और एक अर्थ आत्मा रूपी राम। हम तो बोलते भैया, हम तो आत्मा राम की बात करते हैं, बोलते ना अपने आत्मा राम, ऐसा भी ऐसा होता है, एक हमारा तो आत्मा राम है और कोई हमें कोई किसी कोई मतलब नहीं है, और एक आत्मा और आराम। तो कहते आत्मा आत्मा रूपी बाग में प्रवृत्ति करता है। इसमें तो एक कवि ने बहुत बढ़िया भजन लिखा है कि तू बाहर क्यों जाता है, घरे ही में है फुलवार, सारा बगीचा तेरे अंदर में ही है, उसके अंदर में फलां गुलाब संयम का गुलाब खिल रहा है और फलाने की चमेली खिल रही है और तप का त्याग का, ऐसे ऐसा करके बहुत वर्णन चित्र किया है कि आत्मा रूपी बगीचे में तू जम जाना, बाहर तो कहीं शांति दिखाई देती नहीं है, तेरा आत्मा ही तू है और उसमें तेरी प्रवृत्ति। यहाँ कभी मालूम क्या कहता है कि हमने जो इतना समझाया ना, अन्य भाव से विवेक कराया, कौन सा भावक भाव से और गेय भाव से, और अकेला आत्मा में रह गया तो बस एकदम आत्मा आत्मा में ही जम गया और उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हो गई। उसने ऐसा मान लिया कि तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया आचार्य ने। वसंत भाई देखो अगली लिखा है कार्य। अब इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणत आत्मा को स्वरूप सचेतन कैसा होता है, यह कहते हुए आचार्य इस कथन को समेटते हैं। अगली गाथा तो क्या है कि ऐसा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा क्या सोचता है, ये तो उसकी गाथा है। आचार्य के समर्थन हो गया, वो क्या असली श्रोता को तो हो जाएगा, माने जितना भेद विज्ञान की बात बतानी थी, देशनालोधी का काम करना था, वो काम हो गया। और हम तो ऐसा मान के चलते हैं कि अब तुमको सम्यक दर्शन हो गया, और सम्यक दृष्टि आत्मा आत्मा के बारे में कैसा सोचता है, उसकी 38वीं गाथा है। 38वीं गाथा में क्या कहा है कि आत्मा आत्मा के बारे में क्या विचार करता है, है? ये कहते हैं, इसका मतलब सम्यक दर्शन हो गया, माने सम्यक दर्शन समझने के लिए इतना उपदेश पर्याप्त है, इतनी देशना लब्धि पर्याप्त है। अभी इसकी आगे की टीका में कहेंगे, गुरुदेव के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर, है ना, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आता देखो, जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, वो विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर, टीका में है ना, किसने कहा था कि गुरुदेव मालूम क्या अर्थ करते हैं, गुरुदेव वैसे निठल्ले बैठे जो 24 घंटा समझाते रहेंगे, है ना, गुरु के द्वारा बार बार समझाए जाने पर। गुरुदेव ऐसा करते थे क्या? नहीं, ये गुरुदेव खाली बैठे जो तुझे बार बार समझाते रहेंगे, तो क्या अर्थ है इसका? कि गुरुदेव ने एक बार समझाया तो तू उसे बार बार विचार कर, तो इसी का नाम है गुरु के द्वारा बार बार समझाया जाना। बोलो कौन निकाले ऐसा अर्थ गुरुदेव के अलावा? कि देखो साहब साथ साथ लगा बार बार समझाए जाने पर, अब तो आपने एक ही दफे समझाया हमें, अब कैसे हो जाता, अब बार बार समझाओ तो होएगा। जरा विचार तो करो। गुरुदेव फरमाते हैं कि नग्न दिगंबर भावलिंगी संत छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले भी अपने आत्मा का अनुभव करें कि तुम्हें बार बार समझाने के लिए बैठे, लेकिन योग्य शिष्य हो तो एक बार इशारे में कहे, ख्याल में आए ना, तो उसी को अंदर घोंटता रहे और उसी को कहे गुरु के द्वारा बार बार समझाए जाने पर। सुलग धर्मदास जी के बारे में आता है कि नहीं? सुलग धर्मदास जी का सुना कि नहीं सुना? वे आए आत्मा की खोज में भटकते रहे, छुल्लक तो पहले हो गए लेकिन उन्हें आत्मा कहीं प्राप्त हुआ नहीं, तो वे भट्टारक कारंजा के भट्टारक जी के पास पहुंचे। वो कारंजा के भट्टारक बहुत अध्यात्मी थे, समय सार सबसे पहले कारंजा के भट्टारकों ने छपाया और गुरुदेव ने जो समय सार पढ़ा वो कारंजा के भट्टारक के यहाँ छपे हुए संपा सार को सबसे पहले, क्यों आपको मालूम है ना? गुरुदेव फरमाते 75 वर्ष पहले, अब तो 100 वर्ष पहले हो गया होगा, क्योंकि जब 25 वर्ष पहले सुना होगा गुरुदेव के मुख से, तो उनके पास गए, उनको प्रसिद्ध ज्ञानी है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है बहुत, तो उनसे बहुत पूछा कि आत्मा कैसे मिले, आत्मा कैसे मिले, आत्मा कैसे मिले, आत्मा कैसे मिले। तो उन्होंने, तुझे सिद्ध पाठ का अर्थ आता है? सिद्ध पूजा, सिद्ध पाठ का मतलब सिद्ध पूजा, राधा प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह, इसका अर्थ आता है?
कैसी बात कर,
मैं इतना विद्वान, मैं त्यागी, मैं तपस्वी, मैं सारी दुनिया को पढ़ाता हूँ और मैं इतनी बात नहीं आती होगी क्या? कहा था मुझे आता है, तो फिर पूछा, पूछ पूछ, देखने वाले को तो देखता नहीं है, माथा खाता है, जानने वाले को तो जानता नहीं है, माथा खाता है, और फिर अपने पढ़ने में लग गए चुप।
ये क्या कह रहे
कि देखने वाले को देखता नहीं है, जानने वाले को जानता नहीं है, माथा खाता है। अभी मैंने बोले ही नहीं और दूसरा बात के नहीं बोला, अब वो उनके दिल में जम गई, देखने वाले को देखता नहीं, जानने वाले को जानता नहीं, ये क्या कह रहे, क्या कहना चाहते? मैं इतने दूर से आया, मैं छुल्लक, मैं इनसे भी बड़ा, अब मेरे से ढंग से बात ही नहीं करते। महाराज बोलो ना क्या कहना चाहते हैं? अव्वल उस्ताद होगा तो सैन में ही समझ जाएगा। दूसरा बात उनके मुंह से निकला, क्या क्या निकला? अव्वल उस्ताद होगा तो सैन में ही समझ जाएगा, और नहीं समझेगा तो मैं क्या करूं? सैन माने इशारा, इशारा मैंने कर दिया, अब घोटते रहे घोटते रहे, वहां से चले गए, देखा मैं शिखर जी की यात्रा करके आ गया, फिर लौट के आए, लेकिन वो अंदर अंदर घोटते रहे घोटते रहे, और दो चार महीने बाद जब वे भट्टारक तो नहीं थे, ए, देखने वाले को नहीं दिखता, अरे मैं तो स्वयं देखने वाला हूँ, मैं तेरी ये आत्मा, आत्मा तो देखने जानने वाला ही तो आत्मा है और कौन है, इसको ही जानने के लिए कहा था, और उन्हें समझ दर्शन हो गया। यो एक वाक्य सुना 4 महीना पहले, और 4 महीने बाद, वो 4 महीना के पहले सुने वाक्य से सम्मा दर्शन हुआ। क्या हुआ है? कि गुरुदेव के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर मैं 4 महीने तक गुरुदेव समझाते रहे, उसके अंदर घुटता रहा ना गला में, वो ही गुरुदेव का समझाना, वो अंदर की उस घोटन से वो क्षयोपशम ज्ञान में भी ऐसी निर्मलता पकी। सोरेमल जी ने लिखा है मोक्षनाथ प्रकाशक में कि क्या करना आत्मा के लिए, प्रसाद के लिए, कि निरंतर आत्मा का चिंतन मनन स्वाध्याय करना, तो वो तो कर्म के क्षयोपशम से होता है, तो कर्म का क्षयोपशम के लिए तू क्या करेगा? यही तो करेगा, इससे ही कर्म का क्षयोपशम आपो आप होगा। लिखा कि नहीं? क्या मिथ्यात्व का जब तक क्षयोपशम नहीं होगा तब तक कैसे होगा? क्या मिथ्यात्व का क्षयोपशम भी इससे ही आपो आप होगा? लिखा कि नहीं लिखा? वो 4 महीने बाद समझ में क्यों आया, पहले क्यों नहीं? कि वो जो रुचि का विकास होता रहा, वो रुचि के विकास में 4 महीने में कंटिन्यूटी रही, वो कंटिन्यूटी के विकास में से वो 4 महीने बाद समझ में आया। आज ही मैं गुरुदेव का प्रवचन पढ़ रहा था तो उसमें भी ये बात आई। क्या बात आई देखो मैं बताता हूँ, मैं ला नहीं पाया वो साथ में, उसमें ये लिखा था कि वो जो विकल्प करता रहता है कि उससे हुआ क्या, कि नहीं इससे नहीं हुआ, तो कैसे हुआ? कि वो जो 4 महीने तक रटता रहा ना, तो विकल्प से नहीं हुआ, वो रटन उससे विषय बदला नहीं, तो अंदर में उसी विषय की रुचि रही ना लगातार, तो वो आत्मा के सन्मुखता का पुरुषार्थ होता रहा। आपको तो ख्याल में आ गया ये बात, ख्याल है ना, ये लिखा आपके ख्याल में है क्या? वो जो आत्म सन्मुखता की रुचि का जो तीव्र विकास होता रहा, उस रुचि में से वो बात आ गई। तो आप कहते ऐसे ऐसे कहते मैं स्वाध्याय करता रहूंगा तो क्या करता रहूंगा, मैं सुबह शाम पढ़ता रहूंगा इसमें से आ जाएगा, तो विकल्प में से निर्विकल्पता आ जाएगी क्या? क्या नहीं, विकल्प में से नहीं आएगी। लेकिन जिस जाति का विकल्प होता है वो इस बात का द्योतक है कि तेरे अंदर उस जाति की रुचि क्या मुझे आता है। तो फिर पूछा पूछ देखने वाले को तो देखता नहीं है, माथा खाता है। क्या जानने वाले को तो जानता नहीं है, माथा खाता है। तो फिर अपने पढ़ने में लग गए चुप।
ये क्या कह रहे
कि देखने वाले को देखता नहीं है, जानने वाले को जानता नहीं है, माथा खाता है। अभी मैंने बोले ही नहीं और दूसरा बात के नहीं बोला, अब वो उनके दिल में जम गई, देखने वाले को देखता नहीं, जानने वाले को जानता नहीं। क्या कह रहे, क्या कहना चाहते? इतने दूर से आया मैं छुल्लक, मैं इनसे भी बड़ा, अब मेरे से ढंग से बात ही नहीं करते। महाराज बोलो ना क्या कहना चाहते हैं। अव्वल उस्ताद होगा तो सेंध में ही समझ जाएगा। दूसरा बात उनके मुंह से निकला क्या? क्या निकला? अव्वल उस्ताद होगा तो सेंध में ही समझ जाएगा, और नहीं समझेगा तो मैं क्या करूं? सेंध माने इशारा, इशारा मैंने कर दिया। अब घूंटते रहे वहां से चले गए। देखा मैं शिखर जी की यात्रा करके आ गया, फिर लौट के आए। लेकिन वो अंदर अंदर घूंटते रहे और दो चार महीने बाद जब वे भट्टारक तो नहीं थे, देखने वाले को नहीं दिखता। अरे मैं तो स्वयं देखने वाला हूँ, मैं तेरी ये आत्मा तो देखने जानने वाला ही तो आत्मा है, और कौन है इसको ही जानने के लिए कहा था। और उन्हें समझ ऐसा हो गया, यो एक वाक्य सुना 4 महीना पहले और 4 महीने बाद। वो 4 महीना के पहले सुने वाक्य से समझ ऐसा हुआ। क्या हुआ है? क्या गुरुदेव के द्वारा बारम्बार समझाए जाने पर मैं 4 महीना तक गुरुदेव समझाते रहे, उसके अंदर घुटता रहा ना अंगड़ा में, वो ही गुरुदेव का समझाना। वो अंदर की उस घोटन से वो छेवोपम ज्ञान में भी ऐसी निर्मलता पकी। थोड़ा मजी ने लिखा है मोक्षनाथ प्रकाशक में कि क्या करना आत्मा के लिए, प्रसाद के लिए, कि निरंतर आत्मा का चिंतन मनन स्वाध्याय करना। तो वो तो कर्म के छेवोपम से होता है, तो कर्म का छेवोपम के लिए तू क्या करेगा? यही तो करेगा, इससे ही कर्म का छेवोपम आपो आप होगा। लिखा क्या नहीं, क्या मिथ्यात्व का जब तक सेवोपम नहीं होगा तब तक कैसे होगा? क्या मिथ्यात्व का सेवोपम भी इससे ही आप वहां आप होगा? लिखा कि नहीं लिखा? वो 4 महीने बाद समझ में क्यों आया, पहले क्यों नहीं? कि वो जो रुचि का विकास होता रहा, वो रुचि के विकास में 4 महीने में कंटिन्यूटी रही, वो कंटिन्यूटी के विकास में से वो 4 महीने बाद समझ में आया। आज ही मैं गुरुदेव का प्रवचन पढ़ रहा था तो उसमें भी ये बात आई। क्या बात आई देखो मैं बताता हूँ, मैं ला नहीं पाया वो साथ में। उसमें ये लिखा था कि वो जो विकल्प करता रहता है कि उससे हुआ क्या? कि नहीं इससे नहीं हुआ। तो कैसे हुआ? कि वो जो 4 महीने तक रटता रहा ना, तो वो विकल्प से नहीं हुआ, वो रटने उससे विषय बदला नहीं, तो अंदर में उसी विषय की रुचि रही ना लगातार, तो वो आत्मा के सन्मुखता का पुरुषार्थ होता रहा। आपको तो ख्याल में आगे ये बात, ख्याल है ना, ये लिखा आपके ख्याल में क्या? वो जो आत्म सन्मुखता की रुचि का जो तीव्र विकास होता रहा, उस रुचि में से वो बात आ गई। तो आप कहते ऐसे ऐसे कहते मैं स्वाध्याय करता रहूंगा तो क्या करता रहूंगा, मैं सुबह शाम पढ़ता रहूंगा इसमें से आ जाएगा, तो विकल्प में से निर्विकल्पता आ जाएगी क्या? क्या नहीं, विकल्प में से नहीं आएगी। लेकिन जिस जाति का विकल्प होता है वो इस बात का द्योतक है कि तेरे अंदर उस जाति की रुचि विद्यमान है। 4 महीने तक कोई विकल्प चले, जब तक अंदर में रुचि नहीं हो तो बोलो, किसी चीज की रुचि नहीं हो तो 1 सेकंड में ही भूल जाता है। आपने बात कही हो मैं यहाँ से उठा और भूल जाता हूँ कि नहीं भूल जाता हूँ? क्यों? तो मेरे भाई साहब ने एक चिट्ठी दी कि मुकुंद भाई को दे देना। मैंने कहा कि देखो तो मेरे भरोसे चिट्ठी गारंटी से पहुंचने वाली नहीं है, तुम एक पोस्ट कार्ड अलग डालो कि वो मेरे से ले लेवे तो ही पहुंचेगी, नहीं तो नहीं पहुंचेगी। तो उनने एक पोस्ट कार्ड डाला और इनको फोन किया, और आज इनने मेरे से मांगा तो मेरे पास वो है ही नहीं अभी भी, कांगेज भगवान जाने। वो तो वो उसके बिना तो मिलने ही वाली नहीं थी, लेकिन मैं आज ये समझा हूँ कि वो पोस्ट कार्ड डालने पे भी नहीं मिलेगी। अब मैं किसी की चिट्ठी लेने ही वाला नहीं हूँ, वैसे तो गारंटी से नहीं मिलने वाली है, समझ में आया ना, क्योंकि मेरे उपयोग में रहती नहीं है। अभी तक कोई की ने चिट्ठी मेरे को दी हो मैंने उसकी पहुंचा दी हो ऐसा तो हुआ नहीं है, बहुत कम केस। रिकॉर्ड है इसलिए मैं किसी से लेता नहीं हूँ, मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ। कैसा भाई लेने संस्था के ले जाओ, मैं कहता हूँ कि तुम देना ही है ना तो एक पोस्ट कार्ड लिख के ला और पोस्ट कार्ड पहले डाकखाने में डाल के पादनी जी को कि मैंने डॉक्टर साहब को इतने पैसे दिए हैं तो बिल ले लेना, तो भाई मेरे से मांग के ले लेंगे तो पहुंच जाएंगे, नहीं तो मेरा कोई भरोसा नहीं है। क्यों कि मैं इसको याद रखूं तो मेरा सारा गड़बड़ हो जाता है, मैं कुछ याद रख नहीं सकता हूं। ख्याल में इसलिए मैं झगड़े में पड़ता ही नहीं हूं। आज तक मेरे हाथ की कटी एक रसीद ही सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, मैं किसी को चक्कर में पड़ता ही नहीं। इसलिए क्यों तो बोझ धारा अंदर बहती है, ऐसा नहीं है तुमने इतनी सी कह दी कि जरा इतनी सी बात कह देना। यदि अखंड रूप से धारा बहेगी तभी मेरे को याद रहेगा, अगर एक सेकंड ही बहने वाली नहीं है तो याद कहां से रहने वाली है। वो चार महीना तक याद रही उनको कौन सी, जानने वाले को जानता नहीं, देखने वाले को देखता नहीं। उस में से ज्ञान का क्षयोत्सम भी हुआ, रुचि का विकास हुआ और आत्मा का अनुभव हो गया। असंभव नहीं है, यही मार्ग है। निरंतर तू घोलन करेगा त्रिकाली ध्रुव का समय सार का, तो ऐसा नहीं समझना कि जो एक घंटा बोल रहा है एक घंटा पढ़ रहा है इतने में ही रहता है। अखंड धारा बहती है 24 घंटे आपके उपयोग के अंदर। ये कहते हैं सपना आ गया, इसलिए तो सपना आता है ना। आपके धंधे पानी का भी ऐसा ही होता है। क्यों हंसमुख भाई, बहुत सा माल आपने सपने में भी नहीं बेचा, खरीदने बेच हो जाती है कि नहीं हो जाती है, हो जाती है। क्यों अखंड रूप से धारा बहती है ना, बिजनेस की बहती है, हर चीज को अपनी अपनी बहती है कि नहीं बहती है ना, तो ऐसी ये भी बहती है। तो जब तक तुझे अशुद्धात्मा की रुचि की अखंड धारा अंदर में नहीं बहेगी तब में से आत्मा का अनुभव का पुरुषार्थ पड़ने वाला नहीं है और आत्मा का अनुभव नहीं होने वाला है। क्या ख्याल में आया? अभी मेरे को आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं, तो आत्मा का कभी सपना आया कि नहीं? सपन तो नहीं आया, तो अनुभव कहां से हो जाएगा? भगवान का जन्म होता है तो उसके पहले उनकी माता को 16 सपने आते हैं, तब जाकर के जन्म होता है। तो तेरे सपनों में कब आएगा? जब तेरे विकल्प का निरंतर चिंतन उसी चीज का बना रहेगा। क्यों? एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं ये गाथाएं पढ़ रहा हूं तो 8 दिन से आपके पास पढ़ रहा हूं, कोई बात रिपीट क्यों नहीं हुई? मुझे याद है ना कि मैंने 15 तारीख कौन सी तारीख शुरू किया था, उस दिन से मैं क्या क्या बोल चुका और क्या नहीं बोल चुका। यदि मुझे पता नहीं हो तो रिपीट हो जाए ना, पता। क्यों कि मेरे एक दिमाग में एक सब्जेक्ट बसा हुआ है, अब मुझे पता है कि मैं कहाँ तक आ गया हूँ, कहाँ तक पहुँच गया हूँ, उसके बाद मुझे क्या कहना बाकी है। तो वो धारा अखंड पने से बहती है, तो आकर के यहाँ बैठता हूँ तो वहीं से शुरू करता हूँ। अगर यहाँ तक हो गया तब यहाँ बात चलिए, तो वो नहीं रहे 24 घंटा उपयोग में तो कैसे चलेगा? अब आजकल का मालूम कॉलेज के क्या होता है विद्यार्थियों से, अध्यापक क्लास में आता है, भाई अपन को कहाँ से पढ़ना है, कहाँ तक हुआ था, विद्यार्थियों से पूछता है। विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी मुझे तो पता नहीं, शायद पत्नी ज्यादा हो गई थी। देखो भाई निशान लगा लिया करे, नोट कर दिया करे तारीख, बिना तारीख किए नोट ना गुरुजी को पता रहता है कल तक कहाँ पढ़ाया था, ना विद्यार्थी को पता रहता है कि कल तक कहाँ तक पढ़ा था। अब वे क्या निहाल कहेंगे गुरुजी और क्या कहेंगे विद्यार्थी निहाल। अरे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये विषय आपने कभी नहीं पढ़ा था और आज जो पढ़ लिया और जो नहीं पढ़ा और दो ही तुम्हें एक से दिख रहे, क्या पढ़ा तुमने? जो पढ़ा पढ़ाया तो पढ़ जाना चाहिए ना, नहीं आया समझ में? आप एक बहन आटा पीस रही है, 2 किलो गेहूं रखे हैं, 1 किलो पिस गए, 1 किलो बाकी है। अब उस बहन को ये पता तो रहता है ना कि जो 1 किलो पिसे हुए जो आटा है और जो बिना पिसे हुए, मालूम रहता कि नहीं? तो पिसे हुए गेहूं और बिना पिसे हुए गेहूं का फर्क माता को पता रहता है नहीं रहता है? सब ये पिस गए कि नहीं पिस गए, अब इनको भी मैं द्वारा आटे को फिर डालती है? तो तुम्हारा पढ़ा और नहीं पढ़ा का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, कैसे भले आदमी हो? नहीं आया समझ? क्या कह रहा हूं मैं? रमेश भाई आपका नाम याद रह गया मुझे, क्या क्या कह रहा हूं कि कौन सी गाथा पड़ गई है, उसका कौन सा प्रकरण हो गया है और कौन सा समय सार का हिस्सा मेरा पढ़ा पढ़ाया है और कौन सा बिना पढ़ा है। इतना जिसको पता नहीं है दोनों ही एक से है, उसका भगवान ही मालिक है ना। ये कहने का मतलब है एक व्याख्यान से दूसरे व्याख्यान के बीच में जो विषय वस्तु की अखंड धारा बहना चाहिए, देखें कैसे कमाल नहीं होता। 4 महीने अखंड धारा बही कौन? छुल्लक धर्मदास की। काय की? देखने वाले को देखता नहीं, जानने वाले को जानता नहीं, माथा खाता है। कहने का माथा खराब हो गया है, 2 वाक्य क्या बोल दिए, अकड़ते हैं, बड़े साधु संत बन गए। ऐसे साधु संत मैंने बहुत देखे, और ये धारा बहती तो क्या निकलता उसमें से? 4 महीने बाद सम्मत दर्शन निकलता, मिथ्या दर्शन का बाप निकलता, देश निकलता कि नहीं निकलता बोलो? क्यों माथा खाता है, ये बात नहीं आई, ये दिमाग में रही कि एक कह रहे हैं कि देखने वाले को देखता नहीं है और जानने वाले को जानता नहीं है, तो उसको वो सम्मा दर्शन निकला। ख्याल में आया ना कि ये पंडित जी ने क्या कहा था, उस मुद्दे की बात ख्याल में रहे और वो अंदर में अखंड रूप बहे तो कुछ माल निकलेगा। तो ये पंडित ऐसा डांट दिया, जैसे मेरा नाम लेते, मेरी मजाक उड़ा दी, मेरी हंसी कर दी, ये धारा में बहेगा तो क्या निकलेगा समझ ले। क्यों बसंत भाई ख्याल में आए ना, मुद्दे की बात की अखंड धारा बहना चाहिए। तो कहते आत्मानम विभ्रत, तो ऐसा करके आत्मा अनुभव आत्मा राम में ही प्रवृत्ति हो जाएगी। आत्मा राम माने आत्मा के बगीचे में ही तेरी प्रवृत्ति हो जाएगी। फिर उसमें से प्रश्न खड़ा हुआ कि जब मुझे आत्मा का अनुभव हो जाएगा तब कैसा लगेगा। उसमें 38वीं गाथा है, वो सुबह चलेगी, पौन घंटा अपन को 38वीं गाथा के लिए मिला है।